probably have to go home and get the food. And by that time, they'll get eaten for the morning.
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे, गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदा तेरा वनचारी, जमुना जमुना तेरा वनचारी, जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन jananandaya braj jananandaya yashoda yashodanandaya braj jananandaya yashoda yamuna tira ganchari yamuna Jayarada Madhav Kunj Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Thank you.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिपुराज कचार्य अष्टोदर्शन श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन विविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है यहाँ इस्कॉन के श्री जगन्नाथ मंदिर में रविवार के इस कार्यक्रम में। आप में से कई लोग शायद पहली बार यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ समय पर देखकर। ये जो हमारा जीवन है मनुष्य जीवन, इसके लिए कई उपदेश या कई निर्देश भगवान ने शास्त्रों में कई स्थानों पर दिए हैं। इसे कैसे चलाना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। जैसे जब हम लोग कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलती है, उसमें लिखा होता है कि इसे कैसे चलाना है। अगर हम उसके अनुसार चलाते हैं तो फिर वो अच्छा चलता है, लेकिन अगर हम लोग अपने मन से चलाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं चलता। इसी तरह हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, इसको चलाने के लिए भगवान ने शास्त्रों के रूप में मैनुअल दी है। जैसा कहा गया अगर हम वैसा चलाते हैं तो सुखी रहते हैं, और अगर नहीं चलाते हैं तो दुखी रहते हैं। इस जगत में लोगों के दुख का एक ही कारण है, उन्होंने भगवान के द्वारा कही गई बात को स्वीकारा नहीं, अपने मन से अपना जीवन चलाने का प्रयास किया और केवल दुखों को और कष्टों को अनुभव किया। इसीलिए जब हम लोग आध्यात्मिक स्थान में आए, जैसे कि ये मंदिर, हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या बताया, क्या चाहते हैं भगवान हमसे, उसको हम जानने का प्रयास करें और अपना जीवन बदलें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए, और फिर वही उपदेश भगवान ने उद्धव को दिए, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो भगवान वही ज्ञान उद्धव को देते हैं। बहुत सा ज्ञान दिया भगवान ने उद्धव को, और फिर भगवान ने उद्धव से कहा कि अब मैं अपनी लीला समाप्त करके वापस जा रहा हूं, और जैसे ही मैं जाऊंगा इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाएगा, कलयुग का प्रवेश होगा। इस समय में लोग धर्म को अधर्म मानेंगे और अधर्म को धर्म मानेंगे, इसीलिए उद्धव अब तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, तुम मेरे भक्त हो, और एक भक्त के लिए ऐसी अवस्था में रहना, कलयुग का समय, धर्म को अधर्म माना जाता है, या कहना चाहिए कि सारे धर्म के सिद्धांतों को तोड़ा जाता है। इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति जितना धर्म के सिद्धांतों को तोड़ता है उसको उतना ऊंचा पद दिया जाता है। ये माना जाता है कि वो बहुत प्रगति कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म से परे जा रहा है, भगवान से दूर जा रहा है, इसीलिए प्रगति कर रहा है। ये प्रगति नहीं है, हमने अपनी सभ्यता को त्यागा है प्रगति के नाम पर, लेकिन किसको स्वीकार किया है? केवल दुखों और कष्टों को। क्या मिला है हमें इस प्रगति से? केवल दुख, केवल कष्ट, मानव मूल्यों को खो बैठे हैं हम लोग, एक दूसरे से प्रेम करना भूल गए हैं हम लोग, एक दूसरे पर विश्वास रखना छोड़ दिया है हमने, परिवारों में एक रहना छोड़ दिया है, टूट गए हैं परिवार, इसीलिए सभ्यता नहीं है। बच्चों को आज स्कूल में रामायण महाभारत नहीं सिखाई जाती, बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे धन कमाओ, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाओ, कितना भोग करो, आनंद लो। कौन सा ऐसा स्कूल है जहां महाभारत रामायण सिखाया जा रहा है? आजकल बच्चों को ये महाभारत और रामायण केवल कार्टून में दिखाया जाता है, जिसके कारण वे लोग भगवान को भगवान नहीं केवल एक कार्टून मानते हैं, क्योंकि जो कार्टून में देखते हैं उसको सत्य नहीं मानते। हम सब ने भी बचपन में थोड़े बहुत कार्टून तो देखे होंगे, वैसे तो हम लोग अभी भी देखते हैं बहुत सारे, बचपन में बहुत देखे होंगे बहुत सारे कार्टून, अभी याद नहीं आ रहे हैं अलग अलग नाम, आजकल क्या चलते हैं कार्टून्स, कौन सा है? हाँ, छोटा भीम, भीम तो बहुत बड़ा था उसको छोटा कर दिया, छोटा भीम। तो बच्चे छोटा भीम देखते हैं, उनको लगता है छोटा भीम कोई कार्टून है, और देख देख कर भूल जाते हैं कि सही में असल में एक भीम था। उनको एक काल्पनिक कथाएं लगने लगती हैं, और यही हुआ है, हमारी सभ्यता का नाश इसी तरह हुआ है। अंग्रेज जब हम पर राज्य करना चाहते थे तो उन्होंने एक अध्ययन किया भारत का, और उन्होंने उन्होंने भारत में एक व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था लॉर्ड मैक्यूले, और लॉर्ड मैक्यूले ने फरवरी 1835 में ब्रिटिश असेंबली में, जहां पर लंदन में वो लोग कानून बनाते हैं, वहां पर एक उन्होंने वाक्य कहा। उन्होंने कहा, ये लिखा हुआ वाक्य है, आज भी ब्रिटिश असेंबली में मिल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति दो चीजों में है, एक उसकी सभ्यता और दूसरा उसका जो शिक्षण पद्धति है, जो उनको पढ़ाया जाता है। अगर हमें भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो इन दो चीजों को तोड़ना होगा। तो क्या किया उन्होंने, हमारे जितने शास्त्र थे उनको अपने लोगों से अनुवाद करवाया, और उनके लोगों ने अनुवाद ऐसा किया जिससे कभी विश्वास नहीं हो शास्त्रों पर। इसीलिए आज बालकों से पूछा जाता है, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि कोई बंदर बात करता था, कोई बंदर उड़ता था, समुद्र के ऊपर से कूद गया, ऐसा कभी होता है? बालक कहते हैं नहीं। तो फिर ये भीम हनुमान ये कल्पना है। तो इसीलिए अपनी सभ्यता से अलग जाकर हम लोगों ने भगवान को कल्पना बना दिया है, एक मानसिक कल्पना। लेकिन शास्त्र, भगवान, ये कल्पना नहीं है, ये इतिहास है, ये सत्य घटनाएं हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि कभी कोई बंदर बात नहीं कर सकता, कभी कोई बंदर उड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारी कल्पना के परे है, हमने देखा नहीं। जैसे एक चींटी, जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, मान लीजिए आज रविवार का कार्यक्रम चींटियों का हो रहा होगा कहीं पर, इस भूमि के नीचे कहीं चींटियां रविवार का कार्यक्रम कर रही होंगी, और उसमें एक बुद्धिमान चींटी व्यासासन पर बैठकर ये बता रही होगी कि जानते हो, हम जहां पर हैं उसके ऊपर एक मनुष्य नाम का प्राणी रहता है, वो एक बार में इतना खाता है कि हम लोग 10 साल में नहीं खा सकते। चींटियां मानेंगी? लेकिन हम लोग खाते हैं ना, हम जितना एक बार में खाते हैं चींटियों के लिए 10 साल के लिए बहुत है, पता नहीं शायद उससे भी ज्यादा, जीवन भर के लिए बहुत होगा। तो जब ये चींटी कहेगी, कोई स्वीकार नहीं करे। इसीलिए हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमारी बुद्धि अभी उतनी नहीं है। लेकिन ये सत्य है, इसीलिए शास्त्रों का पालन जीवन में अनिवार्य है। तो उद्धव को भगवान बताने लगे कि अब ये समय ठीक नहीं है उद्धव, अब तुम्हें जाना चाहिए, और जाने से पहले पूर्ण रूप से अपना मन मुझ में लगाओ। यही उपदेश उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन, सफल होना चाहते हो, क्या करना है सफलता के लिए? मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, कुछ नहीं कर सकते कम से कम नमस्कार करो। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर प्रवचन में कहते हैं कि भगवान कह रहे, कम से कम इतना तो करो, नमस्कार करो बस। और यही उपदेश उन्होंने उद्धव को दिया, उद्धव अपना मन मुझ में लगा, जिन चीजों में आसक्ति है उद्धव उसको त्यागो, संन्यास ग्रहण करो, सब चीजों से विरक्ति होनी चाहिए। उद्धव ने इसको सुना, उद्धव ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, संन्यास लेना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है उन लोगों के लिए जिनकी संतानें हैं, जिनके परिवार हैं, जिनको आसक्ति है, क्या ये संभव है संन्यास लेना? बहुत सुंदर प्रश्न है उद्धव का, हम सबके लिए भी यही है ना। कभी कभी हमारे मन में आता है कि ये लोग भगवा वस्त्र पहनने वाले लोग बहुत विरक्ति वैराग्य की बात करते हैं, कभी घर में आके देखें तब पता चलेगा वैराग्य का, है ना। बच्चों को संभालना पड़ता है, रात को बच्चा रोता है, दिन में रोता है, और पता नहीं क्या क्या, खैर आप लोग ज्यादा जानते हैं अनुभव। तो इसीलिए उद्धव ने भी यही प्रश्न भगवान से किया कि आप कह रहे हैं संन्यास लेना है, विरक्ति लेनी है, लेकिन ये संभव है? हम लोग तो आसक्त हैं, उद्धव कहते हैं, हम तो संतान में, परिवार में, समाज में आसक्त हैं, कैसे छोड़ सकते हैं इन चीजों को? ये उद्धव का प्रश्न हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान इसके उत्तर के द्वारा ये सिखलाने वाले हैं कि कैसे परिवार में रहते हुए, संतानों के साथ रहते हुए, समाज में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए उद्धव ने पूछा। उद्धव को आवश्यकता नहीं थी, उद्धव भगवान के बड़े महान भक्त हैं और पहले से भगवान के साथ हैं, तो उनको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान मैं कैसे आपको प्राप्त करूंगा। ये तो उद्धव ने हमारे लिए पूछा कि उन लोगों के लिए जो आसक्त हैं। और भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। तो भगवान ने सुना, उद्धव ने कहा कि ये कैसे संभव है, आप सन्यास की बात करते हैं, हम कैसे सारा वैराग्य ले सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि उद्धव, जहां हो, जिस स्थिति में हो, अपना मन मुझ में लगाना है और उसको लगाने की कला सीखनी है। जिन चीजों को तुम देख रहे हो उनसे सीखना प्रारंभ करो, भक्ति का मार्ग सीखो, हर एक वस्तु से, हर एक चीज से, फिर किसी को त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस संदर्भ में भगवान एक इतिहास बताते हैं। आज का प्रवचन हम उस इतिहास के विषय में कहने वाले हैं। तो भगवान एक इतिहास बताते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव से कि ऋषि मुनियों ने एक इतिहास दिया है उद्धव, इस विषय में जो तुम्हारा प्रश्न है, इस विषय में। और क्या इतिहास है? वो कहते हैं ये इतिहास है ययाति के पुत्र महाराज यदु का। यदु महाराज राजा थे पृथ्वी के, और एक समय एक ब्राह्मण से मिले, तो उनके बीच जो संवाद हुआ वो इतिहास को भगवान दोहरा रहे हैं। आप सोच लीजिए, जिस इतिहास की बात भगवान करें स्वयं, और वो भी कब, जब बस अब भगवान जाने वाले हैं। भगवान ने उद्धव को कह दिया कि 7 दिन बाद ये जो द्वारिका देख रहे हो ये सब पानी में डूब जाएगी, ये तुम्हें दिखाई नहीं देगी उद्धव, 7 दिन बाद समाप्त तो हो जाएगा सब। तो उस समय उपदेश दे रहे हैं उद्धव को, अर्थात जाने से पहले अपने अंतिम उपदेशों में भगवान उस इतिहास को कह रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण होगा वो इतिहास। भगवान कहते हैं कि यदु महाराज मिले एक ब्राह्मण से, अवधूत ब्राह्मण, क्योंकि यदु महाराज बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, वो पहचान गए कि ये कोई महान व्यक्ति है। हालांकि वो ऐसे ही रह रहा था, एक पागल व्यक्ति की तरह, लेकिन यदु महाराज ने पहचान लिया। देखिए, एक भक्त को पहचानने के लिए, एक वैष्णव को पहचानने के लिए हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए, अन्यथा हम वैष्णवों को पहचान नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा। वैष्णव क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, हम उनको अपने स्तर पर जब देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है गलत है। लेकिन भगवान के भक्त, क्योंकि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनके सारे कार्य शुद्ध भक्ति है। अर्जुन ने अपने गुरु के विरुद्ध तीर चलाया, वो शुद्ध भक्ति है। हालांकि समाज में अपने गुरु के प्रति आंख उठाकर देखना भी अपराध माना जाता है। समाज में ही क्यों, शास्त्रों में लिखा है गुरु की पूजा करनी चाहिए, शास्त्र कहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्य उपासना, कि अर्जुन ज्ञान का लक्षण है गुरु की पूजा करना। तो जब ज्ञान का लक्षण गुरु की पूजा है, वही अर्जुन वही भगवद गीता सुनकर अपने ही गुरु पर तीर चला रहा है, वो शुद्ध भक्ति है। क्यों? अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अर्जुन की आंखों में तो आंसू आ रहे थे जब वो तीर चला रहा था भीष्म देव पर, जब वो तीर चला रहा था द्रोणाचार्य पर, अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये भगवान की योजना थी और इसीलिए ये शुद्ध भक्ति है। तो जो भी कार्य किया जाए, तो जब भगवान के भक्त कोई कार्य करते हैं, हमारी दृष्टि से गलत हो सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है अर्जुन ने बहुत बड़ा पाप किया है, अपने गुरु की हत्या की है, अपने वरिष्ठों की हत्या की है, कर्ण को धोखे से मारा है अर्जुन ने, पाप किया है, अनर्थ किया है, यह हमारी दृष्टि है। लेकिन भगवान की दृष्टि शुद्ध भक्ति है। वो ये बड़ी विचित्र बात है ना, पाप करे कोई और शुद्ध भक्ति, अनर्थ करे, अधर्म करे और शुद्ध भक्ति, क्योंकि धर्म की परिभाषा हमने नहीं सीखी। धर्म की एक ही परिभाषा है, धर्म उसे कहा जाता है जो भगवान ने बना दिया, जो भगवान के मुख से आया वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। सरल परिभाषा। इसलिए अगर भगवान चाहते थे कि कर्ण को मारा जाए, अर्जुन ने मारा, हालांकि अर्जुन रुक गया था, जिस समय कर्ण के रथ का पहिया फंस गया, अर्जुन ने तीर नहीं चलाया, अर्जुन ने धर्म का पालन किया, अर्जुन ने तीर नहीं चलाया, लेकिन भगवान ने कहा मारो, और तब अर्जुन ने मारा, वो शुद्ध भक्ति है, वो धर्म है। इस चीज को समझना चाहिए, भगवान की स्थिति को समझना चाहिए। भगवान ने जो कहा वो धर्म है, ये हमारी बुद्धि से हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम भगवान को अपने स्तर पर अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान ने जो कहा वो धर्म है। इसीलिए अपने मन से धर्म को नहीं बनाना चाहिए। जैसे हम बतला रहे थे, हमने सभ्यता छोड़ दी अपनी, बच्चों को स्कूलों में महाभारत रामायण पढ़ाना छोड़ दिया। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को, कौन सा इतिहास पढ़ाया जाता है बच्चों को? रामायण महाभारत कोई नहीं। क्यों? कहते हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो सभी धर्मों को मानते हैं तो धर्म के ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? धर्म निरपेक्षता के नाम पर नास्तिक हो गए हैं। इसीलिए किसी स्कूल में धर्म की बात नहीं होती। तो बच्चा जो छोटा सा पौधे के समान है, उसको आप धर्म नहीं सिखलाओगे तो बड़ा होकर अगर वो पाप करेगा तो उसकी क्या गलती? आगे आने वाले समाज को हम लोग पापी बना रहे हैं, अधर्मी बना रहे हैं, धर्म निरपेक्षता के नाम पर। सच्ची धर्म निरपेक्षता है सभी धर्मों को समान मानना, सबको समान आदर देना, ये सच्ची धर्म निरपेक्षता। ये नहीं कि हम धर्म को निकाल दें अपने जीवन से। बच्चों को आजकल फिल्म के गाने सिखाए जाते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारत जैसे देश में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बच्चा स्कूल से कोई गाना सीख कर आता है, किसी हीरो की तरह डांस करता है, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सोचते हैं मेरे बच्चे का जीवन सफल हो गया। बच्चा अगर भगवद गीता श्लोक बोले तब जीवन सफल है, उस श्लोक को जिए तब जीवन सफल है, रामचंद्र जी के चरित्र को पढ़े तब जीवन सफल है, कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करे तब जीवन सफल है। फिल्म के गाने गाकर कौन सा जीवन सफल होने वाला, क्या मिलने वाला है? वैदिक साहित्य में, वैदिक शास्त्रों के अनुसार गाने बजाने वालों को शूद्र माना जाता, लेकिन इस कलयुग में उन्हीं लोगों को सर पर चढ़ाया जाता है। हम लोग यहाँ भगवान की कथा करते हैं, सुनने के लिए कुछ लोग आते हैं। आज अगर हम यहाँ अनाउंसमेंट कर दें कल दोपहर 12 बजे कोई फिल्म का बहुत बड़ा स्टार यहाँ आने वाला है, आप तो आएंगे ही, आपके साथ 100-200 लोगों को हर एक व्यक्ति लेकर आएगा, यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं होगी, पुलिस लगानी पड़ेगी। ये कलयुग है, भगवान को देखने, भगवान के दर्शन, भगवान को सुनने थोड़े लोग, और ऐसे लोग जिनको वैदिक साहित्य के अनुसार शूद्र मान, नाचना गाना किसके लिए था? ये आप पूछिए अपने अपने घरों में जाके अपने माता पिताओं से जो वृद्ध हो चुके हैं, कौन करते थे ये कार्य? नाचने गाने वालों को बाहर रखा जाता था, समाज में नहीं रखते थे। हाँ, जो लोग भगवान की टोली बनाकर जाते थे, भगवान के भजन गाकर, उनको बहुत मान सम्मान मिलता था, उनको समाज में बहुत मान सम्मान था। और अच्छे अच्छे परिवार के लोग ये टोली बनाया करते थे। ये हमें लगता है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले होता होगा। अच्छे अच्छे परिवार के लोग, ऐसे नहीं कि जिनके पास कुछ करने के लिए, वो टोली बनाते थे, घर घर जाते थे, गली गली जाते थे, भगवान का नाम गाते थे और उनको लोग आदर देते थे। वो जब आते थे तो उनके पांव पर पानी डाला जाता था, उनके चरणों को स्पर्श किया जाता था। हमने खुद देखा है, कुछ वर्ष पहले हम बंगाल में थे, हम लोग तो कई भक्त थे, हम लोग बस से जा रहे थे मायापुर कलकत्ता से, एक गांव में बस खराब हो गई हमारी और बस वाले ने कहा बहुत समय लगेगा। तो हम लोग सब नीचे उतरे और भक्तों के लिए, जब खाली हों करना क्या है, खाली तो कभी रहते नहीं भक्त, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने कीर्तन शुरू किया। तो सब कीर्तन करने लगे तो आसपास में गांव के सभी लोग आकर खड़े हो गए, कीर्तन देख रहे हैं। और हम लोगों को कुछ इतना, हम तो कीर्तन करते रहते हैं, हम लोग तो, हमें कुछ इतना विशेष नहीं लगा, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो सब देख रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद कहा गया कि बस ठीक हो गई, तो हम लोग सब चढ़ने लगे। तो हमने देखा कि वहां जो महिलाएं थी अपनी गोद में बच्चों को लाई थी, तो गोद के बच्चों को लाकर उस मिट्टी में लिटाने लगी। बोलो कि यहाँ भक्तों ने कीर्तन किया है, बड़ी महत्वपूर्ण, उसको लिटा। हमें देखकर आंसू आए आंख में कि ये सभ्यता है हमारी। प्रभुपाद कीर्तन करते थे, जुहू में लोग जाकर पुलिस कंप्लेन करते थे, ये सभ्यता है शहरों की। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में, भगवान आए हैं आपके घर पर और आप कीर्तन होए तो जाकर पुलिस में कंप्लेन करो, दिस इज न्यूसेंस। कहां गई वो सभ्यता? तो इसीलिए उन लोगों को हमने महत्व दे दिया। तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हम लोग आज? शूद्रों का कार्य, इसीलिए ये आवश्यक है। तो खैर, भगवान ने उद्धव से ये कहा कि चीजों को देखकर सीखो। और उसमें इतिहास कहने लगे यदु महाराज का, कि जब अवधूत से मिले वो पहचान गए कि बहुत महान भक्त है। और फिर उस समय उन्होंने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने कहा आप कौन हैं? ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, भोग के लिए, आनंद के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपको इसकी कोई रुचि नहीं है, आप ऐसे ही घूम रहे हैं विरक्त, कोई इच्छा नहीं आपके हृदय में, है कौन आप और कहां से आपके अंदर ये ज्ञान आया? और उस समय ये जो अवधूत ब्राह्मण हैं ये कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे यदु महाराज, मैं, मेरे जो अंदर ज्ञान है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, ये मैंने 24 गुरुओं से सीखा है। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए या 24 गुरुओं से मैंने अपनी बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया है। और इन 24 गुरुओं को मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए और इससे आपको पता चलेगा कि मेरी जो विरक्ति, जो आसक्ति चली गई है वो किस कारण से गई है। तो एक एक करके उन्होंने 24 गुरुओं के नाम लिए। इनमें बहुत से गुरु आएंगे, आज से हम लोग ये जो प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं, हर रविवार 24 गुरुओं का वर्णन करेंगे जब तक 24 पूरे नहीं हो जाते हैं। जिसमें पृथ्वी आती है, हवा आती है, जल आता है, एक वेश्या से उन्होंने कुछ सीखा जिसका नाम था पिंगला, एक तीर बनाने वाले से उन्होंने कुछ सीखा जो तीर बनाता है, एक पक्षी से उन्होंने कुछ सीख लिया, तो इन सबको अपना गुरु बनाया। तो क्या क्या सीखा हर एक से, ये अब वो बता रहे हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो गुण हम सीखेंगे, ये गुण हमें भक्ति में कृष्ण की ओर बड़ी तीव्रता से ले जाएंगे। तो पहले गुरु का वो वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पहली गुरु हैं ये पृथ्वी, जिस पर आप खड़े हो। पृथ्वी का क्या गुण है? पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है सहनशीलता। बड़ी सहनशील है पृथ्वी, सब कुछ सहन कर लेती है। तो सहन करना, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, आत्म साक्षात्कारी होना चाहता है, उसको सभी स्थितियों में सहनशील बनना चाहिए, पृथ्वी की तरह सहनशील। तो सहनशीलता क्या है? कई प्रकार की होती है सहनशीलता। शास्त्रों में प्रमुखतः चार प्रकार की सहनशीलताओं को दिया है। एक सहनशीलता वेगों की सहनशीलता, जब इच्छाएं बड़ी तीव्र हो जाती हैं, हम लोग बस करना है, कुछ करना है तो कर बैठते हैं, उसको सहन करना। बोलने की, जैसे कभी बोलने की इच्छा होती है ना, रुक नहीं पाते हैं, या फिर द्वंद, जैसे ठंडी गर्मी, हार जीत, इसको द्वंद कहते हैं, इनको सहन करना। सुख दुख, सुख और दुख दोनों को सहन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अब कोई व्यक्ति कह सकता है दुख तो ठीक है, सुख को क्या सहन करना है? दरअसल जीवन में दुख सहन करना तो कठिन है ही, क्योंकि जब दुख होता है व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, कभी कभी वो स्थिति से बाहर चला जाता है, कभी कुछ गलत चीजें लेने लगता है। जैसे हम लोग समाज में देखते हैं, लोग दुख सहन नहीं कर पाते, शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, या फिर कभी कभी व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है, या कभी दुख इतना बढ़ जाता है तो फिर आत्महत्या कर लेता है। तो दुख सहन करना तो कष्टदायक है, कठिन है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है सुख सहन करना। सुख सहन करना मतलब जब सुख आए तो व्यक्ति अहंकारी नहीं बने, सहन करना सीखे। क्योंकि जब सुख आता है हम लोग बड़े अहंकारी हो जाते हैं। ईसाई धर्म में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था सेंट पॉल, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है। वो कहते हैं कि जो अहंकार है ये पतन की शुरुआत है। अगर अहंकार आ गया तो निश्चित पतन होगा। तो इसलिए सुख को सहन करना भी बहुत आवश्यक है। तो ये सहनशीलता क्या है? कभी कभी लोग सोचते हैं सहन करना मतलब दबा के रखना है ना, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से को पकड़ के रखना, दिखाना नहीं, दिखाना नहीं, वो सहनशीलता। वो सच्ची सहनशीलता नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है आपने दबा के रखा है। सच्ची सहनशीलता है गुस्सा आए ही नहीं, वो सच्ची सहनशीलता। जैसे एक समय सरस्वती नदी के तट पर कई ऋषि मुनि पुराणों पर चर्चा कर रहे थे, तो अलग अलग पुराण में अलग अलग चीजें दी गई हैं। किसी में कहा गया शिवजी महान है, किसी में कहा गया ब्रह्मा महान है, तो किसी में कहा गया विष्णु महान है। तो चर्चा होने लग गई तीनों कौन महान है। तो भृगु मुनि को चुना गया। भृगु मुनि से कहा आप निश्चित कीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप निश्चित कीजिए कौन महान है। तो भृगु मुनि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, अपने ही पिता के पास। अब स्वाभाविक है कि जब ये वैदिक सभ्यता है कि जब पुत्र काफी समय बाद पिता के सामने आता है तो स्वाभाविक है उसको कुछ अच्छे शब्द कहने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। भृगु मुनि ऐसे ही खड़े रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा पुत्र आया है, लेकिन देखा तो पुत्र कुछ नहीं कर रहा, ना आदर दे रहा है, ना कुछ गुणगान कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, कैसा पुत्र है ये, इतने समय बाद आया, पांव वाव नहीं छुरा, दंडवत प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। तो क्रोध आ गया, लेकिन उन्होंने दबा लिया उस क्रोध को कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पुत्र ही है ना। ऐसा होता है ना, पुत्र कुछ करता है, गुस्सा आता है, लेकिन आदमी चुप रहे, ठीक है, क्या करे, कर्म फूटे हैं, ऐसा पुत्र मिला है, जो भी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोच लिया, क्या करे, ऐसा पुत्र, ऐसे भृगु मुनि तो बड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने दबाया, क्रोध आया, लेकिन वो जो क्रोध था उनके चेहरे पर दिखने लगा। आप देखिए ये जो चेहरा है ना हमारा, हमारा मतलब हम सबका, हमारा नहीं, ये जो हम सबका चेहरा है, ये हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसका दर्पण है, शीशा है। जैसे जब आप शीशा देखते हो, आप शीशों में हंसोगे तो आप हंसते हुए दिखाई दोगे, रोगे तो रोते हुए दिखाई दोगे। तो ये चेहरा ऐसा ही है, अंदर जो होता है, जैसे व्यक्ति बड़ी चिंता में है तो वो मुस्कुराएगा भी तो पता चलेगा ये ठीक नहीं है, है ना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो भृगु मुनि ने देख लिया, तो भृगु मुनि ने कहा ये तो फेल हो गए, पास नहीं हुए। सबकी परीक्षा लेने जा रहे थे ना भृगु मुनि, उनको निश्चित करना था कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भले उन्होंने वश में किया लेकिन क्रोध आ गया। भृगु मुनि ने कहे फेल हो गए, शिव जी के पास गए। शिव जी ने दूर से देखा, मेरा भाई आया है, ब्रह्मा जी के दोनों पुत्र हैं, तो मेरा भाई आया, भागते हुए आए शिव जी। उस समय पार्वती जी के साथ बैठे थे, पार्वती को छोड़े भागते हुए आए, भाई आया है गले से लगाने के लिए। और जैसे ही पास आए भृगु मुनि ने कहा दूर खड़े रहो इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से, ये सब क्या क्या शरीर पर लगा के रखते हो। भृगु मुनि कह रहे हैं उनको, शिव जी को, छूना मत मुझे, दूर रहो एकदम। अब बताइए शिव जी को कोई ऐसा, वो भी पत्नी के सामने, अकेले में कहा होता तो शायद शिव जी सहन कर जाते हैं ना, पत्नी के सामने अपमान कर दिया तो कैसे सहन कर। शिव जी ने तो अपना त्रिशूल निकाल लिया मारने के, पार्वती ने पकड़ा, क्या कर रहे हो भाई है आपका। तो शिव जी फिर थोड़ा वश में आया कि ठीक है ठीक है, स्वाभाविक है ना क्रोध आ ही जाएगा, अकेले होते कुछ कहा होता तो शिव जी को त्रिशूल साइड में, ठीक है कोई बात। तो शिव जी को क्रोध आ गया, वो भी फेल हो गए। भृगु मुनि ने कहा ये भी सहन, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब भृगु मुनि गए भगवान विष्णु के पास। उस समय लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा कर रही थी, जैसे आप यहाँ पर इस चित्र में ऊपर देख सकते हैं, लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। और भगवान ऐसे लेटे हुए थे आंखें बंद किए हुए, और भृगु मुनि गए और सीधे जाकर उन्होंने उनकी छाती पर लात मार दी जोर से, बहुत बड़ा अपमान। देखिए कुछ कहा होता, चलिए शिव जी को तो शब्दों से कहा था, ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने मन से अपराध किया, कुछ कहा नहीं था, मन से अपराध कर दिया, कि कुछ दिया कहा नहीं, उनको आदर नहीं दिया, मन से अपराध हो गया। शिव जी के प्रति शब्दों से अपराध कर दिया, मनसा वाचा, शब्दों से कर दिया, बोल दिया दूर खड़े रहो बदबू आती है तुम्हारे पास से ये वो। और इधर तो विष्णु सीधा लात ही मार दी, चलो थप्पड़ भी मारा होता तो कुछ ठीक था, लात मारना तो एकदम ही अपमान की बात है ना। हम लोगों को कभी किसी को मारना हो तो थोड़ा प्रेम से भी मारना है तो थप्पड़ अप्पड़ मारते, लात मारना तो एकदम निम्न तरह का अपमान है। लात मार दी, वो भी छाती पर सीधे। तो जैसे ही उन्होंने लात मारी भगवान उठकर खड़े हो गए, भगवान आए उठकर बैठे, हाथ जोड़ा उनके सामने और कहा कि क्षमा कर दीजिए, मुझसे जरूर कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ होगा कि आपने ये दंड दिया, तो जो भी अपराध हुआ क्षमा कीजिए, उससे बड़ा अपराध मुझसे ये हो गया कि ये जो मेरी छाती है जिस पर आपने अपने अपने चरणों को मारा, ये वज्र के समान है मेरी छाती, वज्र मतलब बहुत कठोर है, और आपके पाँव में जरूर दर्द हो रहा होगा, लाइए मैं उसको सहला देता हूँ। तो उनके पाँव को हाथ में लेकर वो सहलाने लगे कि आपने ये पाँव मेरी छाती पर मारा, मेरी छाती तो वज्र के समान है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपको दर्द हुआ होगा, मैं आपको सहला देता। भृगु मुनि ये देखकर स्तब्ध रह गए, कोई शब्द नहीं निकले उनके मुख से, वो सोच नहीं पाए मैं करूं क्या, क्योंकि अभी दो जगह महान व्यक्तियों को देखकर आए थे, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, शिव जी तो त्रिशूल लेकर मारने के लिए आए, लेकिन यहां विष्णु उनके ही चरणों को पकड़कर सहला रहे कि गलती हो गई, मेरा इतनी छाती इतनी कठोर है आपके पांव में लग गया हो। स्तब्ध, कुछ बोल नहीं पाए, कोई शब्द नहीं निकले उनके मुख से, हिल भी नहीं पाए, उनको समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। तो जब वापस आए तो उस समय उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को बताया कि सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं। क्यों भगवान विष्णु हैं ये तो आप सब जान ही गए। तो क्या योग्यता देखी कि ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा भड़काने का प्रयास कर रहा है आप शांत रहें। प्रभुपाद लिखते हैं ये सच्ची सहिष्णुता है। सहनशीलता का अर्थ है वो व्यक्ति की वो व्यक्ति सहनशील कहला सकता है जो ऐसी स्थिति में जहां आपको भड़काया जा रहा हो तब भी शांत बना रहे। ये सच्ची सहनशीलता। तो देखिए भृगु मुनि कितना उन्होंने पाप अपराध किया लेकिन भगवान क्षमा। ऐसे एक साधु के बारे में कहा जाता है, एक साधु था बड़ा शांत था। तो एक व्यक्ति ने कहा, वो रोज उसके घर के सामने से नदी में स्नान करने जाता था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि कल कुछ भी हो जाए इसकी सारी शांतता जो है मैं समाप्त करूंगा, क्या करूंगा देखते हैं। तो जब सुबह आने लगा तो बाहर गए और जितने बुरे शब्द वो सोच सकते थे वो साधु को बोल दिए, जितने भी। और साधु मुस्कुरा कर चले गए स्नान करने के लिए। इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। आप सोचिए, आप कहीं से जा रहे हो, अचानक कोई अपने घर के बाहर आकर आपको सारे जितने आप सोच सकते हो उतने बुरे शब्द कह दे, आप क्या करोगे? शांत रहोगे? हाँ या ना? कितने लोग शांत रहेंगे, मुस्कुरा कर चले जाएंगे? चले गए मुस्कुरा। तो ये व्यक्ति तो हार गया। इसने कहा हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए इसको नहा के आने दो। तो नहा के आया वापस, तो नहा कर आ रहे थे तो उसने ऊपर से जो सारा घर का कूड़ा था उसके ऊपर डाल दिया, गंदा पानी कूड़ा सब। अभी अभी नहा कर आ रहे नदी से साधु, ऊपर से सारा पानी डाल दिया। सो साधु वापस चले गए, फिर से नहा कर आए। इसने कहा छोड़ूंगा नहीं, फिर से डाला, वो फिर से चले गए। ऐसे 16 बार हो गया दिन में, कई घंटे निकल गए। वो जाते थे स्नान करके आते ये गंदा पानी डाल, वो फिर जाते स्नान करके आते गंदा पानी डाल। तो 16 बार डाल चुका, ये थक गया डालते डालते, शायद घर का कचरा खत्म हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन साधु कुछ नहीं, वो आते ये गाल मुस्कुराते चले जाते, फिर स्नान करके आ जाते। और जब इतना 16 बार कर गया, थक गया, घर में कुछ बचा नहीं, तो उसने अगली बार भी बकेट में से कुछ भरकर डालना था, बाल्टी भरकर, लेकिन इस बार फूल डाले उसने और साधु के चरण स्पर्श किए कि क्षमा कीजिए मैं तो हार गया, लेकिन मुझे बताइए कि आपके अंदर इतनी सहनशीलता है कैसे। हम लोग को सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सोचिए आपके साथ ऐसा हो तब क्या होगा, आप कितने हंसेंगे। अभी तो हम लोग सुन के हंस रहे ना, 16 बार डाल दिया वो गए यार, आप कितनी बार हंसेंगे? एक बार केवल अगर कोई डाल दे, आप अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर जा रहे हैं ड्यूटी पर, और क्वार्टर्स में नीचे से निकल रहे हैं और ऊपर के क्वार्टर से कोई, आप जाएंगे ठीक है, फिर से जाएंगे स्नान करेंगे, फिर से दूसरी यूनिफॉर्म पहनेंगे, फिर आएंगे, फिर से कोई डाल दे। दूसरी बार तो छोड़िए, पहली बार में ही वहां पर महाभारत शुरू हो जाएगी, राइट? और अगर आपके अधिकार में कुछ बंदूक वंदूक है तो सब निकल जाएगी उधर। तो उसे पूछा 16 बार हो गया आपने कैसे किया? तो उसने कहा कौन सी सहनशीलता, आप अपना कार्य कर रहे थे, मैं अपना कार्य कर रहा था, आपका कार्य था गंदगी डालना, मेरा कार्य गंदगी धोना, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा हर रोज मैं एक ही बार मंत्र का पाठ करता हूं स्नान करते समय, आज पहला दिन है मैंने 16 बार मंत्र का पाठ किया, धन्यवाद। देखिए ये सहनशीलता है। वो व्यक्ति उसमें भी अच्छी चीजें देख रहा है कि मैंने 16 बार आज मंत्र, क्योंकि हर बार स्नान करते हुए मंत्र पाठ करना पड़ता था, ब्राह्मण जो होते हैं स्नान करते समय मंत्र पाठ करते हैं, तो 16 बार बोले मैंने तो कभी नहीं किया, एक ही बार करता था, दो बार करता था, इस बार 16 बार हो गया, तो आपकी कृपा है। तो ऐसे ये सहनशीलता ये आवश्यक है। वैसे जो सहनशीलता है ये प्रभुपाद लिखते हैं कि हम कितना क्षमा कर सकते हैं उसके ऊपर भी आधारित है। कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, जैसे भागवत में एक कथा है रंती देव की। रंती देव राजा थे, बहुत महान राजा, लेकिन कभी कोई लाकर देता था खाने के लिए तो खाते थे, नहीं तो उपवास रखते थे। एक दिन 48 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा और उसके बाद किसी ने लाकर उनको भोजन दिया, अच्छा दूध और घी में बना हुआ बढ़िया भोजन, अपने परिवार के साथ बैठे और खाने जा रहे थे। देखिए कितना, आप सोचिए, केवल देखिए नहीं, कल्पना कीजिए, आप अपने आप को रखिए उनकी जगह। 48 दिन से भूखे हैं, पहले तो आप रह ही नहीं पाओगे 48 दिन भूखे, आप 48 घंटे पकड़ लो, 48 मिनट तो पकड़ लो कम से कम, तो आप बहुत भूख लग रही है। 48 दिनों के बाद कितनी भूख लग रही होगी व्यक्ति को। हम लोग एक दिन उपवास रखते हैं ना जन्माष्टमी पर, सुबह से रात को 12 बजे तक तो घड़ियां देखना शुरू हो जाते हैं, कब 12 बजे, कब 12 बजे, 11:30 बजे मन में आता है अगर आधा घंटा पहले खा लिया तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे, खा लेना चाहिए, है ना। तो 48 दिनों के बाद अब भोजन आया उनके पास, अब वो भोजन खाने ही जा रहे थे, बैठे अपने परिवार के साथ बस खाने जा रहे थे, एक ब्राह्मण आ गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि बड़ी भूख लगी है, कुछ मिल जाता खाने को, तो अपना आधा भोजन दे दिया। अब जो बचा उसमें से बांटा परिवार के साथ। अब खाने ही जा रहे थे कि और एक शूद्र आ गया। अभी देखिए, ब्राह्मण को जब उन्होंने दिया ये सोचकर कि भगवान सब में वास करते हैं, अब शूद्र आ गया तो उसने भी मांगा, बहुत दिनों से खाया नहीं है, कुछ दे दो। ठीक है, जो था वो भी दे दिया, थोड़ा सा बचा, अब खाने जा रहे हैं। अब सोचिए, चलिए आप मानिए आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते हैं? आप सोचते कहीं कोना ढूंढता हूं जाकर अब कोई भी आया अब कुछ नहीं दूंगा। तो रंती देव ने ऐसे नहीं सोचा कि थोड़ा कोना ढूंढता हूं कहीं जाकर, ये तो बहुत हो गया, अभी एक बार दो बार, अब तीसरी बार बिल्कुल नहीं दूंगा, अब कोई भी आए कान आंख बंद कर लूंगा, चुपचाप खाऊंगा कमरे में। नहीं, रंती देव फिर खा रहे हैं और कौन आया, एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ, ऐसे ही नीच व्यक्ति था, कुत्तों के साथ आया। बोलते मेरे कुत्तों ने कुछ खाया नहीं है बहुत दिनों से, थोड़ा उसको खाने को दे दीजिए। बताइए, मनुष्य तो ठीक थे, ब्राह्मण तो ठीक था, ये तो कुत्तों को, रंती देव ने दे दिया, ये ठीक है ले खाओ, सारा भोजन दे दिया। अब केवल पानी बचा था उनके पास, वो पानी पीने जा रहे थे कि एक चांडाल आ गया और चांडाल कहता बड़ी प्यास लगी है, पानी तो पिला दो। तो रंती देव भगवान से कहते हैं कि ये इसको पानी पिला के मेरी सारी प्यास, मेरी सारी भूख मिटने वाली है, मुझे पता है। तो हे भगवान, वो प्रार्थना करते हैं रंती देव कि हे भगवान, इस जगत के लोगों का जितना भी कष्ट है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन इन सबको सुखी कीजिए, मैं यहां रहने तैयार हूं इनके कष्ट सहने के लिए, इनको सुखी कर दीजिए। और वो पानी भी दे देते हैं चंडाल को। आप सबने कल्पना की कि आप उनके स्थान पर होते, पहले ही तो इतनी भूख लगी है, कोई लाकर खाना दिया और आकर मांग रहा है, आप तो पहली बार देते कि नहीं, ये बताइए सच्ची सच्ची ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग पहली बार दे देते हैं? आप लोग सब ईमानदार हैं, कोई नहीं देगा पहली बार ही, कोई नहीं देगा, क्योंकि ब्राह्मण को बोलेंगे बाद में आना, देखेंगे बच्चा कुछ, पूरा पेट भरने के बाद अगर कुछ बच गया तो देंगे, बीच में डिस्टर्ब मत करो, बहुत भूख लगी है, दूसरी बार तो भूल ही जाइए, तीसरी बार तो उसको भगा देंगे दंडा मार के। रंती देव ने दे दिया। अफकोर्स ये सारे देवता थे, ब्रह्मा शिव इत्यादि जो परीक्षा ले रहे थे, फिर वो प्रकट हो गए। लेकिन ये सहनशीलता कि किस तरह उन्होंने इतना सहन किया, पहले तो भूख सहन की, तो ये सब कैसे हो सकता है, सहनशीलता व्यक्ति के अंदर कैसे आती है? ऐसे बहुत असंख्य अभी उदाहरण इतने सारे याद आ रहे हैं सहनशीलता के, शास्त्रों में चैतन्य लीला में उदाहरण है कही, तो अभी समय कम है, नहीं तो इतने उदाहरण है कि कैसे कैसे लोगों ने सहन किया, सहनशीलता है। जैसे हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको मारा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, किस लिए, हरि नाम छोड़ दो, बस हरि नाम छोड़ दो तुम्हें इनाम मिलेगा, अरे तुम मुसलमान हो, मुसलमान परिवार में जन्म लेकर ये हरे कृष्ण कहते हो, कलमा पढ़ना बंद कर दिया तुमने, बंद करो इसको, नहीं 22 बाजारों में मार मार कर इसको खत्म कर दो। हरिदास ठाकुर सहन कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाव क्या था। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरे मुख से हरि नाम नहीं निकले, अरे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, हर टुकड़े से हरि नाम निकलेगा। ये उनकी श्रद्धा थी। तो सहनशीलता अगर हमें अपने अंदर लानी है, पृथ्वी की तरह सहनशीलता, तो हमें पहले ज्ञान लेना चाहिए, हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के आधार पर हम बड़ी आसानी से सहनशीलता को उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अच्छे चरित्र को बनाना चाहिए। अच्छा चरित्र अर्थात जहां व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, इंद्रियों के वश में ना हो। तो ऐसे हम लोग भगवान की भक्ति करके, भगवान के नाम को लेकर, भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को समझकर बड़ी आसानी से सहनशील बन सकते हैं। तो ये पहले गुरु थे उस अवधूत ब्राह्मण के जो पृथ्वी थी। इसके आगे कई गुरु हैं, 24 गुरु हैं, धीरे धीरे उनका वर्णन करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण और बड़े रोचक गुरु हैं। जैसे हमने बताया, एक वैश्या से उन्होंने सीख लिया, एक तीर बनाने वाले से, एक पक्षी से, ऐसे एक राजा से। तो ये सारे गुरुओं का वर्णन आगे आने वाले रविवारों में धीरे धीरे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा? ठीक है, हाँ, किसी का प्रश्न कोई? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और अगले रविवार को ये कथा यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगले रविवार को भक्त सब बेलगाम में रथ यात्रा है। आप सब में से जो भी जाना चाहें, उनके लिए व्यवस्था की जा रही मंदिर की तरफ से, आप लोग नाम दे सकें। शनिवार को, आने वाले शनिवार को बेलगाम में रथ यात्रा है, बहुत बड़ी रथ यात्रा ये होती है, और वहाँ पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आ रहे हैं, भक्ति रसामृत महाराज रहेंगे, राम गोविंद महाराज और हरिपाद प्रभु। तो आप लोग से विनती है कि बाहर जाते समय आप नाम दें, ताकि नाम और नंबर आपका दीजिए तो व्यवस्था की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जाएं, क्योंकि कारवार की रथ यात्रा में बेलगाम से भाग लेने के लिए 400 भक्त आए थे, तो यहाँ से भी कोई भक्तों को जाना चाहिए ना, आदान प्रदान होना चाहिए। भक्ति मतलब यही है ना, आदान प्रदान। तो इसीलिए आप सबसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसमें भाग लीजिए। वैसे इस हफ्ते में 19 और 20 तारीख को दो दिवसों के लिए एक शाम को विशेष कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। 19 और 20 अर्थात गुरुवार और शुक्रवार को रथ यात्रा जाने के एक दिन पहले शाम का कार्यक्रम बम्बई चौपाटी मंदिर से एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं जिनका नाम है सुदामा प्रभु। वैसे वो बेलगाम के हैं, लेकिन चौपाटी मंदिर में कई वर्षों से वहाँ रहते हैं, तो वो आ रहे हैं, उनका प्रवचन होगा। तो कृपया आप लोग गुरुवार और शुक्रवार की शाम को आइएगा यहाँ पर, ताकि आप सब उसका लाभ ले सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का इस समय के अंदर में आप सबका स्वागत है। आप धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बड़ी मात्रा में कथा सुनने के लिए आए हैं, तो भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि आप सबके ऊपर कृपा बरसाएं। आज प्रत्येक सोमवार की तरह महाभारत कथा की बजाय कल मीटिंग होगी उन विशेष भक्तों के लिए जो सभी भक्त रथ यात्रा कार्यक्रम में भाग लिए हैं और सेवा के लिए हैं, तो प्रभु जी कल सबसे चर्चाएं करेंगे, विशेष धन्यवाद देंगे उन भक्तों को
एक मिनट
जो सेवा के लिए।
रथ यात्रा में 25,000 लोगों ने भाग लिया था, सबके लिए मीटिंग नहीं है। जिन्होंने सेवाएं की है रथ यात्रा में, जिन भक्तों ने सेवा की है उन सबके लिए थैंक यू।
जो भक्त लोग विशेष रूप से सेवाएं किए हैं
ये विशेष नहीं, जो भी सेवा
उनको
जाने की खुशी है लगता है, इसीलिए स्पॉन्सर किया है प्रसाद कारवार से जाने। संकल्प प्रभु कहाँ है, खुशी हो रही है जाने की कि दुख में दिया है? सुख में कि दुख में? अभी वो कंफ्यूज हो गए क्या बोले, सुख बोले कि दुख बोले क्या। प्रभु जी को भी यही पूछना था, अकेले में पूछते तो ठीक था। वैसे संकल्प प्रभु बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, ट्रांसफर हो रहा है, हमें तो दुख हो रहा है। रथ यात्रा में भी बहुत अच्छा सेवा किया इन्होंने, थोड़ा बहुत डांट भी खाया हमारा, वो आप सबको पता है, वो तो होता रहता है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी का सेवा किया। और पहले से भी जब से जुड़े हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, कभी कभी अपनी ड्यूटी छोड़कर आकर भी यहाँ सेवा करते थे। क्षमा चाहते, कोई ऑफिसर तो नहीं है ना यहाँ पर? तो बहुत अच्छी सेवा, इनको धन्यवाद देने के लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान से प्रार्थना है जहाँ भी जाएं भगवान की भक्ति छोड़े नहीं, सेवा छोड़े नहीं, और तीव्रता से करते रहें और रिटायर होने के बाद कारवार में आकर सेटल हो जाएं। हरे
इस महीने के 21 और 20 तारीख को चौपाटी टेम्पल से
19 और 20
को
ये ट्रेनिंग चल रही है इनकी, आप लोग चिंता मत कीजिए, वैसा होता रहे।
वरिष्ठ भक्त सुदामा प्रभु आ रहे हैं, तो हमारे यह सौभाग्य है कि हमें उनका स्नान करने को मिलेगा और उनके मुखारविंद से भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है कि 19 और 20 को शाम 6:30 बजे यहाँ आए और प्रभु जी का संग लें। और जैसे 21 तारीख को इसी महीने के बेलगाम रथ यात्रा है, तो आप सभी भक्तों के लिए निःशुल्क व्यवस्था किया गया है, जो हमारी यहाँ रथ यात्रा में विशेष रूप से जो भी सेवा किए हैं उनके लिए फ्री में व्यवस्था किया गया है आने और जाने के लिए। 21 तारीख को आप लोग जो भी भक्तगण जाना चाहते हैं बाहर सचिव प्रभु का नाम दे दें और अपना संपर्क जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो देंगे ताकि आप लोगों से संपर्क कर सकें। और 22 तारीख को वहाँ से वापस आने का भी व्यवस्था है, तो आप लोग सही समय से सही नंबर और सही जानकारी वहाँ दे दें नाम, ताकि आने जाने के लिए कोई असुविधा ना हो। और बेलगाम रथ यात्रा में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आएंगे और परम पूज्य भक्तिराज अमृत महाराज आएंगे और परम पूज्य राम गोविंद महाराज रहेंगे और उनके साथ पूजनीय हरिपद प्रभु भी रहेंगे। तो ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि हमें पुनः महान संतों और महात्माओं का दर्शन करने को मिलेगा, स्नान करने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वहाँ जाएं और अपना भाग्य को सफल बनाएं। और जो भी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट थे, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए थे हमारे यहाँ रथ यात्रा में, उन सबको हम यहाँ बुलाना चाहेंगे ताकि पुरस्कार से अनुग्रहित करें उनको। प्रभु जी अपने हाथों से उन्हें पुरस्कार देंगे। और साथ में कल्पना रश्मि कारों से जो स्टूडेंट थे जो डांस में पार्टिसिपेट किए थे वो भी यहाँ आए, एक एक करके उन सभी का नाम बुलाया जाएगा। यहाँ लाइन से आए और प्रभु जी के हाथों पुरस्कार ग्रहण कीजिए।
बच्चों ने आप सबको बताएं कि आप सब ने देखे होंगे स्टॉल्स लगे थे, प्रीचिंग के स्टॉल्स जहाँ पर मॉडल्स बनाए हुए थे, तो स्कूल के बच्चे और एक जगह कॉलेज के बच्चे, ये बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे लोगों को अलग अलग तरह से चीज़ें, मंदिर क्यों जाना चाहिए, अच्छे गुरु कैसे चुनना चाहिए इत्यादि। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दोनों दिन करीब 3 घंटे या 4 घंटे लगातार लोगों को वो समझा रहे थे। बहुत मेहनत की उन बच्चों ने और बड़े आभारी हैं उन सभी बच्चों के। उनमें से किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला है, लेकिन हमारी दृष्टि में सभी लोगों को पुरस्कार मिला है, भगवान की कृपा उनको मिली है, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे लगातार बोलते रहे लोगों से और बहुत अच्छी तरह समझाया था। हमें कई लोग बता रहे थे बाद में आके कि बहुत अच्छी तरह वो समझा रहे थे। तो सभी बच्चों के, स्कूल और कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके हम बड़े आभारी हैं और आशा करते हैं कि हर वर्ष या हर उत्सव में वे लोग इसी तरह भाग लेते रहेंगे। तो अभी उनके नाम पुकारे जाएंगे, वे लोग आकर अपना उपहार ले सकते हैं।
Hare Krishna. So we shall first start the school students exhibition. So the first prize is backed by the topic Respecting Our Mothers, which was executed by Shri Prasad Mungi, Shyam Pillai and Arjun MP. So I request all of them to please come and collect their prizes.
Okay, Hare Krishna. Thank you. तो इन तीनों को प्रथम पुरस्कार मिला है, थोड़ा जोर से तालियां बजाना।
So the second prize is backed by the topic. So we have a tie for the second prize. There are two groups who have backed the second prize. So the first second prize winner is the topic Real Knowledge, which was executed by Ananya Naik, Abhinya Naik and Rahul Naik.
थोड़ा जोर से तालियां आप लोगों को, तालियां।
So another second prize goes to Real Education, which was presented by Sameer Sheikh, Kishan Andekar and Prajwal Madigal.
Self-control by Sahil Rainekar, Suprato, Raghupati, Siddharth and Saish. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Aap log thak gaye? बच्चों ने मेहनत की, हम लोग जोर से ताली बजाते तो बनने लगे।
So now we have the 3 prize winners. Now we'll be giving a token of prize for all the participants. So the next group is Power Up Association, Ganesh Bhatt, Anup Lakshmi Bhatt and Manish Gurav. The next group is Living on Mother Nature's Gifts, Shubham Kotarkar, Harsh Naik, Vishu and Aditya Nagendran. So now we shall move with the College Students Exhibition. So the first prize is backed by the topic There are so many gurus, so where shall I go? Presented by Shreya Arnan. Second prize goes to the topic Our Parents God is Service to Parents, the Highest Service. Presented by Priyanka Kumari and Satyam Rai. The topic is service to man, not service to God. Is Manav Seva, not Madhav Seva. Presented by Sonali Desai and Harsh Pavaskar. So we had our three winners. Now we shall give the prizes to the participants. The next topic is, how can a stone image be God? Presented by Arpita and Puru. The next topic is, when God is present everywhere, why should man go to temple? Presented by Deepika Revankar and Prithvi Gura. Why do temples provide special gifts for a quick darshan to those who give more donations? Aren't everyone equal in the house of God? This was presented by Sneha Desai and Ramlila Sain. Why do temples spend so much on expensive religious rituals when beggars are starving outside the temple? This was explained by the Pull Line and Swapnali Govind. The next topic, why does God allow natural disasters like earthquakes, tsunamis, etc.? This was presented by Diksha Naik and Apeksha Naik. Is there only one God or there are many gods? Presented by Kasmari Revendikar and Omkar Vendikar. So these were the prizes for exhibition. Now we shall give a token of love for Kalpana Rashmi Kalaru, who had presented a beautiful dance on the Rathyatra occasion. By Sanjana, Shreya, Janvi, Vatsalya, Pranam, Sahana, Priyana, Priyadarshini and Anuja.
वैसे एक स्पेशल प्राइज देना चाहते हैं क्योंकि ये सब बच्चों को लेकर आना और उनको ऑर्गेनाइज करना ये वेद ने किया था तो इसलिए वेद के लिए एक स्पेशल थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सो इन बच्चों को एक बार और सभी बच्चों को जिन्होंने भाग लिया और उन बच्चों को भी जिन्होंने रथ यात्रा में भाग लिया उनमें से पांच बच्चों को हम लोगों ने वहीं प्राइज दिया था स्टेज पर तो जिनको नहीं भी मिला उन सबको भी धन्यवाद और अगले वर्ष भी इसी तरह बच्चों की रथ यात्रा भी होगी और एग्जीबिशन भी तो सभी बच्चों से विनती है कि वे लोग भाग लें
हरे कृष्णा मैं संकल्प प्रभु को जो मैसेज से आगा वाले जो भक्त हैं वो कुछ उपहार देना चाहते हैं प्रभु जी के यहाँ पर तो फिर से संकल्प प्रभु को हम यहाँ बुलाएंगे संकल्प प्रभु को यहाँ आएंगे
एक्चुअली जब व्यक्ति रहता है कोई इतना प्रेम नहीं दिखलाता, जिस दिन जा रहे सब बड़ा प्रेम दिखलाते हैं, पता नहीं क्या। संकल्प प्रभु भी सोच रहे होंगे पहले ट्रांसफर आया होता तो कितना अच्छा था। आप लोग दीजिए, आप सब मिलकर दीजिए। तो ये अर्घा के जितने भी हमारे डिवोटीज हैं उनकी तरफ से जोर से धन्यवाद। और कुछ तो कृपया आप सब से विनती एक बार और कि बेलगाम रथ यात्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना चाहिए, ताकि अगली बार बेलगाम से 400 की जगह 500 भक्त आएँ और हम लोग रथ यात्रा अच्छे से कर सकें। तो आप सब कृपया बाहर नाम दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Sir, down. I will. 10 minutes. 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 10 minut